राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 सितंबर 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे भीनासर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। सज्जनों पूज्यजनों भाईजनों बहनों से मैं निवेदन करता हूं, आप हर एक बात को समझने की चेष्टा करें। शास्त्रों का क्या मर्म है ये वास्तव में तो भगवान जानते हैं और दूसरे अनुभवी पुरुष जानते हैं। मैंने तो उन लोगों ने सुना है और जैसा पढ़ा है वैसा कहता हूं, परंतु एक बड़े दुख की बात है कि पारमार्थिक तत्व की बात तो समझते नहीं और समझना चाहते नहीं और स्वार्थ की अभिमान की बात को ही मुख्य मानकर चलते हैं। और स्वार्थ और अभिमान को मुख्य मानेंगे तो शास्त्रों की बात समझ में आएगी नहीं। भगवान की इतनी विचित्र बातें हैं, शास्त्रों की ऋषि मुनियों की इतनी गहरी बातें अच्छी है जो सबका कल्याण करने वाली है, परंतु एक तो स्वार्थ और एक अभिमान, ये दो चीज महान नरकों में ले जाने वाली है और उनको मुख्यता देकर आज चलते हैं। तो उनको लेकर के शंका करते हैं, उनका समाधान नहीं होता। जब तक वे सरल होकर इस विषय को जानना नहीं चाहते तब तक कैसे समझेंगे। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है, तो उत्तर दिया कि काम और क्रोध। काम ने क्या कि एक तो हमारे को मिल जाए चीज मिल जाए ये कामना, और उसमें बाधा रखे में क्रोध और एक अभिमान का, मैं कुछ हूं, मैं बड़ा हूं और मैं बड़ा हो जाऊं मेरे को लोग बड़ा समझे, मेरे को ऊंचा समझे। ये भावना बड़ी गहरी है, इसका छूटना कठिन है, पर भगवान के चरणों के शरण होने से ये बात सरल हो जाती है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते। बहुत विलक्षण भाव है। मैं अपनी बात कहूं तो आपको आश्चर्य होगा। मैं एक बात थोड़ी सी कह देता हूं, मैं इस मार्ग में लगा हूं, इस विषय की खोज में लगा हूं, विचार करता हूं, कहता हूं, सुनता हूं, ऐसे मेरे काफी वर्ष हो गए हैं, परंतु सच्ची हृदय की लगन वाले आदमी नहीं जैसे मिलते, बहुत कम मिलते हैं। ऐसे जमाने में आप इतने इकट्ठे होकर सुनते हैं, ये आपकी बड़ी भारी कृपा समझता हूँ। और अपने को आप शूरवीर है ऐसा मैं समझता हूँ, आप बड़े शूरवीर हैं, ऐसे जमाने में भी ऐसी बातें सुनते हैं। बड़ा जोर का जाल आया हुआ है। अब प्रश्न आता है, मैं ज्यादा क्या कहूँ, समय थोड़ा है मेरे पास, मेरे बेहतरी बातें मैं पूरी कह सकता नहीं हूँ, फिर भी थोड़ी कहता हूँ कि आपके द्वारा दिया गए प्रश्नों में शूद्र के लिए संध्या करना, ओंकार नहीं कहना, ऐसा करते हैं। भगवान तो सबके लिए एक ही है, फिर दूर भाव क्या है? अगर जाति से शूद्रों के तो भगवान ने मान ही मानस ने कबीर को सर्वसंधार कैसे दिया?
मानस कबीर,
अच्छा मानस कबीर कौन है? ये मानस कबीर को सर्व अधिकार कैसे दिया? मैं मानस के बारे को जानता नहीं भाई, मानस कबीर को मैं जानता नहीं हूँ। कहते मानस कबीर को हो ऐसा ऊंचा दर्जा कैसे दिया? और कर्म से शूद्र है तो आपके पास जितने लोग आते हैं मैं उसमें 99% फिर आप शूद्र ही है। अपूर्व अधिकार कैसे देते हैं और शंका का समाधान करें?
नहीं, बात पूछ रहे हैं, शूद्र को संध्या का अधिकार है या नहीं?
देखो अधिकार होता है अलग अलग, बालकों को अधिकार दूजा होता है, जवानों को अधिकार दूजा होता है, बूढ़ों का अधिकार दूजा होता है, ऐसे ब्राह्मणों को अधिकार दूजा होता है, क्षत्रियों को अधिकार दूजा होता है, बणियों को अधिकार दूजा होता है, शूद्रों को अधिकार दूजा होता है। श्री श्री कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः, उस अधिकार के अनुसार चलने से ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अब बालक जवान की क्रिया करे तो कैसे करेगा? जवान बूढ़े की क्रिया करे तो कैसे करेगा? तो वो क्रिया करने की बात नहीं है, अलग अलग अधिकार है और अधिकार श्रेष्ठ है, वो ही श्रेष्ठ है। मैंने इस विषय को कहा है, आप लोग पकड़ पाएंगे नहीं इस बात को, मेरे को पता नहीं। शूद्रों को क्यों दिया दिया? तो जैसे आज हरिजन कहते हैं जिसको, मेरे हरिजन कहते हैं हम ओंकार जप करेंगे, हम वैदिक संध्या करेंगे, तो उनके लिए ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं है इस बात का अर्थ ठीक समझते नहीं, ठीक नहीं है तो हमारे अधिकार क्यों नहीं दिया गया? ये क्या है? ये अभिमान बोलता है, ये कल्याण की इच्छा नहीं बोलती है, हमारे को अधिकार होना चाहिए। तो अधिकार आप ले लो, धिक्कार मिलेगा धिक्कार। अरे भाई अधिकार नहीं दिया, अधिकार का अर्थ ही आप नहीं समझते। जैसे स्त्रियों को कह दिया कि आपको गायत्री जप का अधिकार नहीं है, तो अधिकार नहीं का अर्थ तो समझो। आप लोगों को आफत से छुड़ाया है, इस आफत में आप मत पड़ो, आप सीधा राम 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 करो, कल्याण वही होगा जो संध्या करते हैं उनसे तेज होगा। मेरे को सच्चे हृदय से कोई पूछे तो भीतर से मैं कहता हूँ, वे संध्या करके नरकों में जाएंगे और राम राम करे तो संसार में पूजनीय हो जाएंगे। वही अछूत है जिसको हम अछूत कहते हैं, ऐसे अगर राम राम करे तो महात्मा हो गए हैं, हुए हैं और हो सकते हैं, हो जाएंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार से एक प्रश्न किया कि शूद्र है वो ब्राह्मण हो सकता है क्या? ब्राह्मण की तरह वेद पढ़े, संध्या गायत्री करे, ऐसा ब्राह्मण हो सकता है क्या? तो उत्तर दिया नहीं हो सकता, ब्राह्मणों का पूजनीय हो सकता है। जानकार का ये उत्तर है, ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण और ब्राह्मण की लड़की के साथ ब्याह करे ऐसा ब्राह्मण नहीं हो सकता, पर ब्राह्मणों के लिए पूजनीय हो सकता है, आदरणीय हो सकता है ब्राह्मणों के लिए। अब क्या अर्थ होता है समझते हो आप? नाम जप करके इतना ऊंचा महात्मा हो जाएगा, ब्राह्मण लोग आदर करेंगे, जो सच्चे ब्राह्मण वास्तव में भजन ध्यान करने वाले अपने धर्म में पालन करने वाले ब्राह्मण वे आदर करेंगे, और केवल ब्राह्मण पढ़ने का अधिकार है और केवल अभिमान है वो नहीं समझ सकेंगे, अभिमान याद नहीं समझ सकेंगे। नीच नीच सब तिर गजे राम भजन लो लीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन, जाति के अभिमान में सब डूबे, सबका नरक है। जाति है वो कर्म करने के लिए, अभिमान करने के लिए नहीं है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणोचित काम करने के लिए ब्राह्मण है, अभिमान करने के लिए नहीं है। साधु है तो साधुता पालन करने के लिए साधु है, साधु अभिमान करने के लिए नहीं है। और अभिमान करेगा तो पतन होगा, होगा संदेह नहीं है इसमें। और अभिमान न करके साधुता पालन करेगा तो पूजनीय हो जाएगा। ऐसे ब्राह्मण पने का अभिमान से नहीं होगा। अब वो अभिमान तंग करता है कि हमारे को संध्याकार ओंकार का क्यों नहीं अधिकार दिया, तो अधिकार आप ले लो, परंतु उनसे भाई आपका नुकसान है, क्योंकि अभिमान से तो नुकसान होता है। भगवान के लिए भी कहा है कि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि भगवान को अधिकार अभिमान अच्छा नहीं करता। अभिमान कहते द्वेषी है और दीनता सरलता नम्रता भगवान को प्यारी है। कहते शबरी का आपने इतना ऊंचा दे दिया, आदर दे दिया। अरे शबरी को दे दिया तो शबरी ऋषि मुनियों से डरती थी, मेरी छाया भी इन पर न पड़ जाए ऐसे डरती थी। रात्रि में उनकी डगर बाहर करके बाड़ू रख करके संतों के चरणों में कंकर नहीं चुभे ऐसी सेवा करती और देख दिन भाग जाती। तो सेवा करती थी, उसने कभी अपने को साधुपने का अभिमान किया? श्रमणा नाम आता है उसका वाल्मीकि रामायण, मानो आश्रम वाली, जैसे साधु आश्रम में रहे ऐसे आश्रम वाली थी वो, परंतु कभी साधु पने का ऋषि पने का अभिमान उम्र में भी कभी छुआ उसको? उसने खुद ने कहा है अधम आते अधम अधम अति नारी, मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत बातें आई है, आप कृपा करें तो आज सुन ले, कल फिर सुन ले, मैं कह दू, नहीं तो थोड़ी थोड़ी कहूंगा, ज्यादा मैं कह सकूंगा नहीं, मैं बहुत कम जानता हूं, परंतु कई बात मेरे कहने के मन में आती है और मैं जहां तक मैं ठीक कहता हूं मर्यादा से चूक जाऊं तो आप चेता देना, मेरे सभा में कह देना कि तुम मर्यादा विरुद्ध कहते हो, और मेरे समझ में आ जाए तो मैं हाथ जोड़ माफी मांग लूंगा। मेरे को कोई अभिमान डर नहीं लगता है, तो अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, अभिमान के सिवाय संध्याकार ओंकार को हमारे को क्यों नहीं अधिकार दिया? आप इतने बैठे हो सज्जन, बिल्कुल सरलता से निर्भक और कह दो इसमें अभिमान है कि अपने कल्याण की इच्छा है, बताओ। किसी के मन में आदमी हो अभिमान नहीं है तो कोई बोलो सबको छुट्टी है, बोलो। क्या इसमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इच्छा है या अभिमान है? हमारे को संदेह का अधिकार क्यों नहीं किया, बोलो धड़क। मेरी दृष्टि में तो अभिमान है पूरा, उसको परमात्मा प्राप्ति कभी नहीं होगी। जो ऐसा अधिकार चाहता है कि हम ओंकार होना चाहिए, हमें संदेह करना होना चाहिए। देखो कलयुग की ये महिमा है, और ऐसा कहा है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजानांच प्रतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्। जहाँ अपूज्य है उनका तो पूजन होगा। शास्त्र ने जिसको अपने श्रेणी पर रहने कहा है उनका अपूज्य है उनका पूजन करोगे, और पूज्य जन है उनका तिरस्कार करोगे, तो तीन चीज होगी ये फल बताया है। एक तो अकाल पड़ेगा, एक मृत्यु होगी, महामारी फैलेगी, और एक भयभीत होंगे, शांति से सुख से कोई रह सकेंगे नहीं। अब बंबई आदि में लोगों की क्या दशा हो रही है, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या शांति से रहते हैं, रह सकते हैं शांति से, भय बना रहता है। और अकाल पड़ेगा और मृत्यु होगी, कई मर गए, बम है कई मर गए, ये चीजें होगी। ये जो अधिकार हमारे को मिलना चाहिए इसके कारण से होती है ये दशा होगी। अब पूछिए हमारे को जी पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए, अरे भाई तुम पूजा के लायक बन जाओ, नाना कहते लोग पूजा करेंगे, ऐसी बात देखने में आई है, मेरे समझने में अनुभव में आई है बातें, कितना आदर करते हैं। महाराष्ट्र में गाड़के जी महाराज थे, गाड़के नाम है ठीकरे का, फूटी हांडी वो एक रखते थे, सास रोटी खाया करते थे, लाखों लाखों की संपत्ति उनकी वहां बनाई हुई है, कई मास पाठशाला बना दी गई, धर्मशाला बना दी गई, और सास रोटी खाया करते। बंबई में मैं गया था उस समय वो थे, तो बड़े अच्छे पंडित व्याख्यान देते थे, सदा सत्संग कराते थे। वे कहता है कि गाड़के जी आते वहां बैठता है, मेरा हृदय गदगद गया, कैसे संत है, क्या धोबी थे जात के, तो वे पंडित आदर करते थे, पर वे कभी ऊंचे आसन पर नहीं गए, उपन्यास पर नहीं बैठे, तो अपना अभी क्या नहीं जमाया, अपना वही रहते बस कीर्तन करते भजन करते लोगों को लगाते। तो ऐसी बात देखी हुई है मेरी। और जो ये कहते हैं हमारे को क्यों नहीं अभिमान है, उनका तिरस्कार होता है, हमारे क्यों नहीं अधिकार, उनका तिरस्कार होता है, समाज आदर नहीं करता। जबरदस्ती किसी पद पर आरूढ़ हो जाए तो पद के कारण से लोगों को बड़ा मानना पड़ता है, परंतु हृदय से तिरस्कार करते हैं, और हृदय से ऊंचे होते हैं, ऊपर से चाहे बाहर बैठे वहां बैठो आप नहीं सूते, पर हृदय आसन देता है, क्योंकि हृदय से ऊंचे हृदय आसन देगा, शरीर से ऊंचे शरीर आसन देगा। सीधी सीधी बात, न्याय युक्त बात है। टक्का जी उसमें कोई अधिकार क्यों नहीं दिया, तो अधिकार भाई अधिकार नहीं दिया जो अधिकार क्यों, अधिकार नहीं तुम्हारा कल्याण राम नाम से हो जाए, ऊपर आफत में क्यों जाओ तुम। श्वे श्वे कर्मणि अभिरत सर्व सिद्धि लगते, अपने में कर्तव्य कर्म में करने में अधिकार को प्राप्त होता है। तो आपको जो शास्त्र ने अधिकार बताया है उसके अनुसार आप भजन करो, रात में लग जाओ, देखो आपका अधिकार आपका आदर होता है कि नहीं होगा, आपका आदर होगा, पर आदर चाहोगे आदर नहीं होगा। मारवाड़ी कहावत है, घी तो आडे घटा ही खाली जाए, घी है जो हाँ ना ना करते हुए घी लाओ घी लाओ घी मिल जाएगा। ये आदर सत्कार आदर मिले माने आदर उनसे अधिकार मिले, कुछ नहीं मिलेगा उनको, और आदर चाहते ही नहीं हम। शेर जी जयदयाल जी ने काम किया है, परंतु गीता की टीका नाम नहीं लिखा, गीता प्रेस में कहीं नाम नहीं है उनका, पुस्तकों में लिखने में कहते लेख लिखो नाम नहीं लिखेंगे, ऐसा रहा। ये कितना काम किया है। शरणानंद जी के वो मान सेवाश्रम है, शरणानंद जी नाम नहीं लिखा है पुस्तकों में, शरण नाम नहीं लिखते हैं। शेर जी को बहुत आग्रह किया कि आप लिखो लेख लिखो लेख, उनमें नाम लिखो अपना, नहीं तो लोग कैसे पढ़ेंगे, आप सुनाते हो तो आप पर श्रद्धा है तो लोग पढ़ेंगे, इस वास्ते नाम लिखो। तब लेखा में नाम लिखना आया है, शादी संजय भैया पहली भाषा टीका, साधारण भाषा टीका आप देखो, लाखों लाखों प्रतियां छप गई शेर जी की लिखी हुई, शेर जी के अपने शेर जी का नाम निशान नहीं है कहीं भी, अपना नाम ही नहीं है। कौन ऐसा आदमी है जिसने इतना काम किया और अपने नाम का निषेध करता है, आप बताओ। मैं दो नाम ले जयदयाल जी का और शरणानंद जी का नाम लेता हूं, आप तीसरा नाम बताओ कोई भाई, अपना नाम नहीं चाहते।
अपनी बढ़ाई नहीं चाहते, अपने प्रसिद्ध होना नहीं चाहते, व्याख्यान देते हैं, मैं तो साधारण भय, मैं तो बढ़िया हूँ, मैं तो वेश बालक हूँ, ये कहते थे व्याख्यान। मैंने सुना है कहीं भी, मैं ऐसे आदर के पात्र नहीं हूँ, मैं तो एक वेश बालक हूँ। गंगेश्वर आदि महाराज, मंडलेश्वर और सशास्त्रों के और वेदों के आचार्य ऐसे बड़े पंडित थे, वेद कंठस्थ, उनके संख्या से बताते थे। भरोस की बात है, क्षण में सम्मत में स्पेशल गाड़ी गई थी तो हम लोग गए थे, और सभा भरी तो शेठ जी को बुलाया और मेरे सामने वहां कहो, हम साधु होकर के इतने पढ़ करके काम नहीं कर सकते, ब्राह्मण होकर के काम नहीं कर सकते, जिन इस वेशी भाई ने किया है, दयादयाल जी ने काम किया है। कौन ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है जो कल्याण में प्रकाशित नहीं हुआ है? गंगेश्वर जी ने कहा, मैंने सुना कुछ भ्रंश की बात है। अब वे चाहते थे कि हमारे ऊंचा आसन पर बड़ा करे, चाहते ही नहीं। तो वास्तव में बड़ा बढ़ने से बड़ा बनोगे, अभिमान से बड़ा बनोगे, पतन होगा, पतन। हमारा घर क्यों नहीं दिया, तुम शूद्रों को क्यों नहीं कहा, जाति से शूद्रों की तो भगवान ने
दुर्भाव क्यों
किया जी?
भगवान ने दुर्भाव कैसे किया?
हाँ, दुर्भाव कौन सा?
भगवान तो सबके लिए है, फिर दुर्भाव कैसे कि हम संज्ञा नहीं करें?
हाँ, संज्ञा नहीं करिए, दुर्भाव कैसे हुआ? ये तो दुर्भाव है, बालक के जवानी का हमारे को दुर्भाव क्यों किया? दृष्टांत दिया है, ये वो गंदी सी बात है, उस बात क्या करूं, आगे तो कहनी पड़ती है। कलौ वेदांति न सर्वे फाल्गुने बालका ही, फाल्गुने बालक गीत गाते हैं, फगड़ गाते हैं, गाते हैं बहुत बहुत, क्रिया करतु अनेश्वरा, क्या जवान हो गए? ऐसे होंगे कल युग में ऐसे वेदांति होंगे जो बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे पर अनुभव जय जयराम जी की, ऐसा होगा। तो इस तरह सी बातें हैं, तो दुर्भाव क्यों किया? दुर्भाव कैसे हो गया? संध्या मत करोगे,
आप बता रहे थे महाराज जी अधम से अधम अधम।
हाँ, वो बता रहे थे, शुक्रिया दे रहा। सबरी को कहा कि तू सब तरह से वह निशी ही, तो सबरी खुद कहती है अधम अते अधम अधम अति नारी, पांच पदाए। आपने समझा क्या अर्थ होता है इसका? अधम कौन? सबसे पहले अधम क्षत्रिय है, उत्तम कौन के? ब्राह्मण। तो अधम अते अधम वैश्य और अधम के शूद्र और अति कौन के? अछूत, और उनमें कौन के? स्त्री। ये आपको कहती है, अपने आप को कहती है कि अधम अते अधम अधम और अति, और उस नीच जाति अछूत जाति में फिर स्त्री, और तीन स्त्री तीन में मैं मतिबंद गंवारी, उन स्त्रियों के बीच में उन अछूत जाति की स्त्रियों में मैं मतिमंद और गंवारिणी। अब ऐसा मानती है तब मोटा मोटा मुनि ने ना आश्रम मुकी ने शबरी ने घेर जाए छे, बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे पास भट्ठा में नहीं है, समय नहीं है, तो भगवान उनके घर पधारे। अब कहते हो भगवान गए, भगवान ने तो किया नहीं, आदर किया तो आदर करते हो, तो शूद्र का आदर किया है वहां, सबरी सबर जाति जिसे आदर किया है, आदर किया है भक्ति के कारण से। क्या बताऊं, समय थोड़ा मेरे पास, वहां प्रसंग आप देखो, कबंद आया है वो कि तुमने ब्राह्मण का अपमान किया, तो ताय ग्राम गति देय उदारा सबरी के आश्रम पग उधारा, चौपाया भी दोनों में एक चौपाई में उसको भगवान ने उदार किया। देखो ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना, ऐसे ब्राह्मणों की प्रशंसा करी है वहां कि तेरी है कुबंद गति हुई, ब्राह्मण का अपमान किया, ब्राह्मण का तिरस्कार किया तेने, इस बार से तेरी है दुर्गति हुई, ऐसा कभी मत करना। वो ब्राह्मणों की बात कही, उसमें बड़ी बड़ी बात लिखी है, सापद तापड़ परुष कहंता विप्र पूज्य अश्वे संता, ऐसी बात बताई, ब्राह्मण की बहुत महिमा करी है, जब ब्राह्मणों की महिमा करके और आगे चले गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आप रामायण देख लेना, कहते हैं कि ताहि राम गति दे उदारा, उदार राम जी ने उसको गति देनी और सबरी के आश्रम पग उधारा। एक चौपाई लिख देते, दूसरी चौपाई लिखते, एक चौपाई में एक टुकड़े में बोले सत्य बोले कभी महिमा करते हैं उसकी, तो शूद्र होने से वो अछूत होने से महिमा करते हैं। आप विचार को मैं तो चौड़े कहता हूँ कि अच्छा है, आप लक्षण धारण करो, भजन करो, आप पूजनीय हो जाओगे, आदरणीय हो जाओगे, तो आप ऊंचे हो सकते हो। पर अभिमान है, अधिकार हमारे क्यों दिया, मंदिर में हमारा अधिकार क्यों नहीं दिया, अधिकार में तो भया था। जो नृपुष है अधिकार ले, नृपुष राजाओं से अधिकार मिल जाए, जो नृपुष अधिकार ले करतन पर उपकार, पुण्यता के अधिकार में रहतन आदि आकार, अधिकार में अधिकार रहेगा। जो नृपुष राजाओं से अधिकार प्राप्त हो गया, अरे अपने काम ठीक तरह से करता नहीं तो राज अधिकार दे देगा। जो नृपुष अधिकार ले करतन पर उपकार, पुण्यता के अधिकार में रहतन आदि आकार, नहीं रहेगा अधिकार रहेगा, राशि धिक्कार मिलेगी, राशि मिल गया तो मोटे हो गया, बड़े हो गया, अपना काम ठीक नहीं करे धिक्कार मिलेगा उनको, ये अधिकार की दशा है। आप जरा सोचो, मानस कभी का अधिकार, और कमर शूद्रों को तो आपके पास जितने लोग बैठे हैं 999 में शूद्र है, फिर आप कर्मों को अपूर्ण अधिकार कैसे देते हैं। हमारे पास बैठे सबक शूद्र है, बहुत अच्छी बात है, आप सबको हमारे को सबको शूद्र कह दो, हमें कोई दोष की बात नहीं, हम तो अपने भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बात करते हैं। अरे भाई ऊंचा उठो, देखो छोटा है वो ही बड़ा बनेगा, कि बड़ा होता है वो छोटा बनेगा, बताओ आप, बद्ध होगा वही मुक्त होगा, मुक्त मुक्त होगा, जो फंसा हुआ है वही मुक्त होगा ना। तो हम तो छोटे हैं, इस वास्ते बड़ा पढ़ने की चेष्टा करते हैं। हम तुम्हारे पास बैठे उस सब ऐसे ही हैं, तो हमारे भाई ये सभी हम ही ऐसे ही हैं, हम कौन से बड़ा कहते हैं आपको, हम ऐसे बड़े ऐसे नहीं, मैं तो अब बैठना ही पड़ता है, ऊपर कहना ही पड़ता है, नहीं तो मैं तो नीचे बैठ बात कर दूंगा, खड़ा हो जाऊं तो इधर खड़ा रह सकता नहीं, इस वास्ते आप इधर बैठ जाते, बैठ जाता हूं, मेरी कोई बात ऐसी है नहीं। तो अब हम तो ऐसे नैन, हम तो उनमें है ही, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि ऐसा क्यों करते हो, तुम हमारे को आसन दो, हमारे को नमस्कार करो, हमारे को दंडवत करो, मैं तो करता हूं भाई मत करो, हमारे को नमस्कार मत करो, दंड से मेरे को पैर मत छुओ, हमारा नमस्कार मत करो, हम तुम्हारे को मुक्ति दे देंगे। जैसे बढ़िया हो वो रुपया तो ले ले, कपड़ा तो हमारी दुकान में है ही नहीं, तो रुपया क्यों लिया तुमने, ऐसे नमस्कार करे हमारे और हम मुक्त न कर सके तो फिर मुक्ति तो दे सकते नहीं, तो नमस्कार ही नहीं लेते, हम लेते ही नहीं, पैसा ले ले तो देना पड़ेगा, हम लेते ही नहीं, या ले गए उसको देना पड़ेगा, कोई दुकानदार ऐसा है रुपया तो ले ले और कपड़ा देने, कपड़ा तो हमारे है ही नहीं, तो फिर रुपया क्यों लिया तुमने, इस बात हम लेते ही नहीं, पहले दंडोत ले नहीं, नमस्कार कराते ही नहीं, क्योंकि उसका कल्याण हो जाए, संत महात्माओं के नमस्कार कल्याण हो जाए, महात्मा की दूरी रहने से कल्याण हुआ है, संतों के चरण रज से कल्याण हो जाए, तो हम विरोध करते हैं, क्यों करते हैं, कि ये रुपया तो ले लें कपड़ा दें ही नहीं, बेईमानी नहीं करना चाहते हमें भैया, हमारे कल्याण करने की ताकत नहीं, कहते कृपा हो जाए, भैया कृपा भगवान की होगी, मनुष्य क्या कृपा करेगा, हमारे में सामर्थ्य नहीं हम कृपा कर दें, सीधी सादी बात है भाई, हमारे पास एक माल है ही नहीं, तो हम तुम्हारे से कृपा क्यों लें, क्यों दंडोत करावे, क्यों नमस्कार करवावे, क्यों हमारी पूजा करवावे, क्यों हमारी धूल तुम्हारे को दें। शेर जयदल जी ने कहा था कि हमारी धूल ले ले चरणों की तो इसमें मुक्ति नहीं होगी, अगर ये मेरे को मालूम हो जाए, शेर जी कहे हुए व्याख्यान की बात कहता हूँ, हमारे को मालूम हो जाए कि हमारी धूल लेने से कल्याण हो जाएगा, तो हम तुम्हारे किसी पूछे ही नहीं, कुआं में जाकर धूल ना दो जो कल्याण हो जाए, सब गई, हमारी धूल लेने से कल्याण हो जाएगा, तो हम तुम्हारे किसी पूछे ही नहीं, कुआं में जाकर धूल ना दो जो कल्याण हो जाए, सब गई, हम कल्याण चाहने के लिए गल खराब करते बाका फाड़ते हैं, कहते हैं अगर इसलिए हो जाए तो मान तो बहुत सस्ती बात है। हमारे तरह दूध है कोई छानना छिप करके कहीं नहीं मालूम नहीं पड़ता, जार कुएं में नाक दो तो पानी पी दे सड़न कल्याण हो जाए। तो मेरे दूध में तो कल्याण है नहीं, इस कैसे करूं, छेड़ दर नहीं आई। अब दूर से कल्याण है, जहां हम तुम्हारे बाधा देते हैं तो तुम्हारे कल्याण की बाधा कर रहे हैं, हम तुम्हारे उद्धार नहीं हो ऐसा करते हैं हम। तो ये अभिमान की बातें हैं, तो क्या बात है इनका बात है। अब दूसरी बात और सुनाऊं, लीला विचित्र विचित्र भगवान की लीला है। कल जो भी लीला, कल मेरे तो कुछ आंख खुली को भी क्या है, ये कल जो है नाम ले बताऊं क्या। कई कई संप्रदाय है, नाम लेने के मना करते हैं, उन संप्रदायों में कहते हैं बता ले, वो कहते हैं कि तुलसी मत लो, चरणामृत मत लो, रामायण मत पढ़ो, है
ना।
अच्छा, आज कुल कुछ व्यक्ति अपने को रामस्नेही संप्रदाय का बताते हुए, हम रामस्नेही हैं ऐसा कहते हुए लोगों को तुलसी चरणामृत लेने से, मंदिर में जाने से, गीता रामायण पाठ करने से मनाही करते हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों का विरोध किया जाना उचित है कि नहीं? क्या रामस्नेही संप्रदाय ऐसी बातें, रामस्नेही संप्रदाय में ऐसी बातें लिखी हुई है? अब क्या उत्तर दें बोलो। अब मुश्किल हुई हमारे, तो हमारे पर अब आगे बात। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं। तुलसी क्या है? ये कलयुग महाराज है, देवी भागवत में आया है, कलयुग आएगा तब साधुओं में ब्राह्मणों में राक्षस आएंगे, वे ऐसा प्रचार करेंगे, भगवान के नाम का निषेध, कीर्तन का निषेध, राम नाम का निषेध करेंगे। ये राम नाम निषेध कर नहीं करते हैं, ये राम नाम करो, मंदिर में मत जाओ। अब किस तरह से किया जाए, ये बात है कैसी विचित्र है, थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग सुने। वास्तव में अनन्य भक्ति है, अनन्य अनन्य चेता सततं व्योमां स्मृति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युत से योगिना। अनन्य होकर के, तो अनन्य नाम किसका है? आज दूसरों की निंदा करने का नाम अनन्य हो गया। अनन्य था भगवान की उपासना करने में, तुम एक रुपये लग जाओ दूसरे की जरूरत नहीं है, गीता ने खुद कहा है। पर इसका अर्थ नहीं कि अनन्य भगवान के भक्त हो जाए और दूसरों की निंदा करो, दूसरों का तिरस्कार करो, अपमान करो। ये अनन्य का अर्थ ये निकाला है रामस्नेही संप्रदाय में, ऐसी बात लगाइए, चरण बदलो, मंदिर बदलो। बताया कि तुम एक राम 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 करो, सब काम एक में सिद्ध हो जाएगी, तुझे जरूरत नहीं। मूल में तो ये बात है, लिखते हैं कि चरणामृति मतलब मंदिर में जाओ, तो राम राम तो करेंगे नहीं और मंदिर में जाएंगे नहीं, क्यों? मंदिर में निषेध किया है, या राम राम करने में जोर आवे, वो तो करते नहीं। अब वो एक बात पकड़ लेंगे, और ये कोई सब संप्रदायों में नहीं है, राम संप्रदायों में, या संप्रदायों में थोड़ा सा है एक समुदाय, तो उनमें ये वैसा प्रहार करते हैं जोर से कि शंकराचार्य रिजन देव तीर्थ जी, उनके सामने लोगों ने कहा कि रामस्नेही है, वे शास्त्रों की निंदा करते हैं, मंदिरों की निंदा करते हैं। तो उस सभा में गया, मैं जानता हूँ हमारा नाम लोगों को, मैं जानता हूँ रामस्नेही है, कभी निंदा नहीं हुई, तो शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं, कैसे तुम कहते हो ऐसे? सभा में कौलायत की बात है। तो वे आ गए थे वहां पर, तो रामस्नेही सब करते हैं, रामस्नेही करते, ये निंदा रामस्नेही करते हैं, वो हमारी निंदा हो रही है, हम क्या करें? जब निंदा हम स्वीकार कर लेंगे, वे निंदा स्वीकार करो लेंगे। परंतु ये जो कहते हैं शास्त्र, ये बात मूल में थोड़ी बहुत भी कहीं आती है तो अनन्य भाव के लिए आती है, अनन्य भाव करते हैं, ये रामस्नेही संप्रदाय में नहीं है, श्री संप्रदाय में भी है, वल्लभ संप्रदाय में भी है, उनमें अनाश्रय हो गया, ये हमारे लिए तो अनाश्रय हो गया, ये संप्रदायों में है। अच्छे अच्छे पूजनीय आदरणीय संप्रदाय मानता हूँ, उनके आचार्य आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, हृदय से अनुरोध करता हूँ, ऐसे है। पर उन संप्रदाय में अन्य आश्रय हो गया, यह दूसरा तुम नाम लिया। मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं, श्री कृष्ण है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय राम नहीं बोलेंगे, राम बोले तो अनाश्रय हो गया, ये अनन्य आश्रय नहीं रहा, राम कह दिया, राम बोलेंगे नहीं, ओम बोलेंगे नहीं, कृष्ण बोलेंगे ना। तो बात क्या थी, कृष्ण नाम में तुम तत्परता से लग जाओ कि एक ही इष्ट रखो, इसका अर्थ ये तो है कि राम राम से बैर करो, ओमकार से बैर करो, ये होता है। ये तो हम हो गए अनन्य भगत, और रुपयों के लिए करे लड़ाई, जमीन के लिए लड़ाई करे, या राम जी का नाम नहीं ले, तो राम जी से रुपया बड़ा हो गया, क्या रुपया तो उत्तम हो गया, राम जी नीचा हो गया, इतना जिसका नाम ही नहीं ले, रुपया इतना बड़ा हो गया, अनन्य हम अनन्य, ये कैसे अनन्य हुए। संप्रदायों में ऐसी बातें होती है, और मैंने देखी है, सब मैं कहना भी नहीं चाहता, मैं जानता हूं, मैं जान गया हूं, देखा है मैंने, मैंने खुद आचरण देखे हैं, हमारे साथ जो हुआ है वो भी मैं जानता हूं, हम करते हैं वो ऐसा। तो क्या बात है, ये केवल अभिमान है, अपने अभिमान, अपने गुरु को नहीं मान सकते, अपने संप्रदाय को नहीं मानते, अपने सिद्धांतों को नहीं मानते, और अभिमान पढ़े पैसा मिले वो काम करते हैं, पैसों के तो लोलुपता है, और अपने सिद्धांतों को नहीं मानते। तो पैसा है वो क्या राम जी से भी रद्दी है क्या, नहीं, पैसा पैसों से राम जी रद्दी है क्या, पैसों से भी, पैसों के लिए लड़ाई कर लेंगे, पैसों के लिए गर्व कर लेंगे, और अपने गुरु और अपने बड़ों को नहीं मानेंगे। क्या है ये कलयुग बना दी लीला है। तो ये जो बात कहते हैं कि हम निषेध कर रहे हैं, तो भाई हम तो ऐसा करते नहीं, न हम ऐसा मानते हैं, ये संप्रदाय के आचार्य है, भागवत भागवत की कथा करी आप लोगों ने सुनी है, रामायण में जो भागवत का नाम तो नहीं लिखा, उन्हें गीता और भागवत में रामायण, भागवत भी साथ ही आई गई, गीता में कहता ही हूँ, सुनाता ही हूँ, रामायण का पाठ चलता ही है, अभी रामचंद्र नहीं है, रामचंद्र का आचार्य है, जाकर होगा। मैंने सुना कि तुम तो हमारे मन की बात पूरी होनी चाहिए, मन की बात तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएगी, राम जी के बाप की भी मनता ही नहीं हुई, राम जी को राज के चढ़ा बनवास हो गया, राम जी के बाप की बात होगी मन में, राम जी के बाप की बात नहीं हुई, राम की लुगाई की बात नहीं हुई, राम जी की बात नहीं हुई, तुम हमारे मन की बात हुई, कैसे हो जाएगी, राम जी की लुगाई वहां राक्ष समझा बैठी, क्यों बैठी, क्योंकि सोने की जगह सुंदर मृग मिले तो मेरे सोने की पूरी में जा बैठा हो इनको कैसे इच्छा पूरी हो जाएगी। सोने मृग ना, सोने मृग सेवा चाहिए तो मृग सेवा क्यों, नगरी नगरी सोने बैठा दो, तो भाई ये तो इच्छा पूरी कैसे हो जाएगी, मन चाहिए पूरी किसी की हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। देखो बड़ी मार्मिक बढ़िया बात है, इच्छा पूर्ति कभी किसी की हुई नहीं, सबकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, कुछ इच्छाएं पूरी होती है, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये सबका अनुभव है, सब इच्छाएं पूरी होती है, और कोई आदमी है, कोई बहन आप में हो कि हमारी जो सब इच्छाएं पूरी होती है वो पता है, हमारे देश में सब इच्छा किसी की पूरी नहीं होता, कहता हूँ इतिहास में नहीं हुई, अपने आपकी हुई हो तो आप बता दो, अभी बैठे बता दो, खुला बता दो, ऐसा मत समझो कि स्वामी जी का निरादर हो जाएगा, सब इच्छाएं किसकी पूरी हुई बताओ, और कोई इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा ही बताओ, कोई इच्छा पूरी हुई है कई तो, और कई इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, यह अवस्था सबकी है, छोटे बड़े ऊंचे ने सबकी, सब इच्छाएं पूरी नहीं हुई, और कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसी बात इच्छा कहीं पूरी हुई, इससे इच्छा के साथ इच्छा पूरा होना विधान नहीं है। इच्छा जो होने वाली है बात, उसकी इच्छा करी वो पूरी हो गई, जो होने वाली नहीं है उसकी इच्छा करी वो नहीं हुई, और इच्छा करी नहीं और पदार्थ आ गए, इच्छा करी नहीं आए और नहीं करी नहीं आए, ये चारों बातें होती है। फिर सुन लो, इच्छा करते हैं पदार्थ आ जाते हैं, और इच्छा करते हैं पदार्थ नहीं आते, दो बात, और इच्छा नहीं करते पदार्थ आ जाते हैं, और इच्छा नहीं करते पदार्थ नहीं आते हैं, ये चार बातें हैं। तो इच्छा के साथ वस्तु का मिलना संबंध नहीं है, ये बिल्कुल सबका एकदम अनुभव है। इस बात की से शिक्षा लेनी चाहिए कि इच्छा मत करो, इच्छा का त्याग करो। गीता ने कामना के इच्छा के त्याग पर बड़ा जोर दिया है, हर एक ग्रंथ में इतना जोर नहीं मिलेगा। भगवद गीता में इच्छा कामना का त्याग करो ये बात आई है, क्योंकि कामना की इच्छा करने से त्यागा शांति अनंतरम तत्काल शांति मिलती है। अरे पूरी होने वाली बिना इच्छा भी होगी, नहीं होने वाली नहीं होगी, तो होना है जैसे होगा, फिर इच्छा करके अपना मालना क्यों गमावे भाई, अपनी इज्जत क्यों खोवो। इच्छा नहीं रखे आपसे आप होगा, होने वाला आने वाला आ जाएगा बिना इच्छा। भागवत में इच्छम इंद्रिय सुखम इंद्रिय गम राजन स्वर्ग नरक, इंद्रियों से होने वाला स्वर्ग में भी होता है नरक में भी होता है। कैसे होता है? प्राणी नाम तथा दुखम, जैसे दुख बिना बुलाए आता है, बिना उद्योग किए आता है, ऐसे अनुकूलता भी बिना उद्योग बिना आ गई। तो क्यों इच्छा करो? छोड़ दे नहीं, कल्याण हो जाए, जीव का उद्धार हो जाए, तो कामना का त्याग करो। तो ऐसी बातें ये कलयुग महाराज जी आ रही है, ये सिद्धांत की बात, पक्की बात। आप इच्छा मत करो, आना है वो जरूर आएगा, जरूर आएगा इतनी बात नहीं है। मैं तो एक बात दूसरी मानता हूं, इच्छा न करने से सुखपूर्व चीज आवेगी, और इच्छा कर उद्योग करने से क्लेशपूर्व चीज आवेगी, आने वाली आवेगी दूसरी आवेगी नहीं। इच्छा करने से तकलीफ उठाओगे ना आवेगी, इच्छा नहीं करने से बिना तकलीफ आवेगी। एक बात और मानता हूं मैं, कोई इच्छा मत रखो पर नया प्राप्त बन जाएगा, नया नई बात हो जाएगी, जो अच्छे वाले नहीं है वो आने लग जाएगी। सर्वथा भीतर से इच्छा रहित हो जाओ, इसमें एक मार्मिक बात है, थोड़ा ध्यान दें आप लोग। आप ये कल्पना करो कि मेरी एक इच्छा हुई कि एक बढ़िया घड़िया बना जाए, ये मामूली घड़िया है, बढ़िया घड़िया बन जाए, तो मेरे बढ़िया घड़ी की मन में अथवा सामान्य घड़ी की मन में आ जाए, घड़ी मिल जाए, तो मेरे मन में आती है घड़ी की और मेरी आवश्यकता भी है, तो मैं जब पकड़े रहता हूं इच्छा को, तो मेरी इच्छा मेरे में ही रहती है। अरे मेरे आवश्यकता है और मैं इच्छा छोड़ देता हूं, मनुष्य जरूरत तो है परंतु इच्छा अपने करने क्यों मिले, हमें न मिले, अपने बिना घड़ी काम चलता है, इतने वर्ष जाता अभी भी चलेगा, क्या हर्ज है? ऐसी इच्छा छोड़ दें तो घड़ी की इच्छा क्या होगी कि हमारे इतना छूटे पर सबके भीतर व्याप्त होगी, तो किसी के मन में यूं उद्देश करेगा कि स्वामी जी घड़ी दो घड़ी दो घड़ी दो। तो इच्छा छोड़ने दें, आप तक इच्छा पहुंचेगी, पकड़ी रखो तो इच्छा आप तक कैसे पहुंचेगी? आपने ख्याल कर लिया होगा, हम इच्छा के पकड़े रहते इच्छा पूर्ति नहीं होगी, और हमारे जरूरत तो है पर इच्छा नहीं करते, आपसे आप आवेगी, वो गर्ज करेगी, वो देने वाला गर्ज करेगा, हमारे गर्ज होगी तो हम गर्ज करेंगे, मिलेगी नहीं मिलेगी, पर देने वाले की गर्ज पैदा होगी। कब? कि हम भीतर से इच्छा का त्याग कर दें, कोई जरूरत नहीं है। जब हमें इच्छा का त्याग कर देते हैं, दूसरे लोग निगाह करेंगे स्वामी जी के क्या जरूरत है, कौन सी चीज की जरूरत है, वो हमें पहुंचाएं वहां, और पहुंचा कर राजी होंगे। सिद्धांत है ये, एकदम सिद्धांत पक्का है। अब ज्यादा से ज्यादा मेरी बीती हुई बात है और वो किसका प्रमाण मेरे को पता है। मेरी इच्छा हुई मेरे काम नहीं हुआ, अगर ऐसा छूटी इतना हुआ मेरा जो पारी होनी। इच्छा छोड़ते ही आपके जोरदार इच्छा हो और उसे छोड़ दो और उसको भूल जाओ कि मेरी इच्छा है कि नहीं, उसी वक्त में चीजें आ जाएगी पट। ऐसा नियम है, आप समझेंगे नहीं, ख्याल का अल नहीं, मेरी बात का अर्थ आप समझे नहीं, समझे नहीं। फिर दोबारा कह देता हूं, मेरे इच्छा हुई कि एक घड़ी मिल जाए, कल्पना करो मेरी इच्छा नहीं है घड़ी की, मेरी जरूरत नहीं, घड़ी मेरी कहीं पड़ी है जगह जगह घड़ियां हैं, पर ऐसी इच्छा हो जाए तो घड़ी मिलती नहीं। और घड़ी बहुत जोरदार इच्छा हुई कि घड़ी मिले, घड़ी मिले, घड़ी मिले, तो वह इच्छा क्या हो कि वो इच्छा घड़ी है, उसके मन में घड़ी बस गई हमारे, घड़ी मिले, घड़ी मिले, घड़ी मिले। और जब हमें छोड़ा तो यहाँ की वो इच्छा आप लोगों में टकराएगी, फैलेगी, और जब मेरी इच्छा भूल जाऊंगा पट घड़ी आ जाएगी। अब कब आओगे कैसे आएगी पता नहीं, मेरी बीती हुई बातें हैं। और चीज आ जाए फिर क्या करें, ऐसी विविधि है। अचानक मेरे को आकर कह गया आप जी ले लो ये 100 रुपया ले लो, 100 रुपया, मैं तो रुपया हमें जरूरत नहीं है, इच्छा ही नहीं है, चाहना ही नहीं है, फिर भी हम क्या कर भाई। वो कहते कुछ कोई चीज चाहे चाहो, ये वृंदावन की बात है, ये बजरंग बैठा अभी यहाँ, बहुत आग्रह किया तो बजरंग को बजरंग ज्यादा एक है तो अपने क्या है, रात्रि में हम देखे तो टेबल लाइट अपने पास नहीं है, ये मथुर जाकर लाया था बैठा, कुछ सब बात तुझे पता नहीं है, मैंने इतनी चीज जरूर लिया हो। तो रुपया आने के बाद विचार किया अभी क्या चाहिए, क्या चाहिए, सोचा अगर कुछ चाहिए नहीं तो वो टेबल लाइट हो, ऊंची लाइट करे तो जीव जंतु बहुत आ जाते हैं, हमें पढ़ने के लिए जरूरत रहती है सुबह, तो टेबल लाइट हो तो उसमें हम पढ़ पाठ पूजन कर ले, ज्यादा फैले नहीं तो जीव ना आवे, ये सोचा मैंने तब वो बात हुई। अरे सही थी नहीं, ये मतलब लय वृंदावन की बात है। तो उस चीज की आवश्यकता होगी तो जबरदस्ती आती है, जबरदस्त ये लो ये लो ये लो, कोई इच्छा बाकी रहती नहीं, इच्छा बिना किया आती है। अब बिना इच्छा करके आप देखो, अब बिना इच्छा करी आई तो नहीं, ये नहीं, ये परीक्षा करो नहीं होगी कि भाई इच्छा छोड़ दी आ गया जाए तो आई तो नहीं, माना इच्छा छोड़ दी हमने, ये परीक्षा की बात नहीं है, भीतर से खाता उठा दो फिर देखो तमाशा। अब परीक्षा करो तो नहीं आएगी, भगवान परीक्षा रावण ने करी कि एक जानकार है तो सोने के मृग के पीछे नहीं जाएंगे, और ऐसा है तो जहरान नृपनारी जाऊंगा तो भगवान फेल हो गए, मृग के पीछे चले गए। रावण से सर्टिफिकेट लेना होता तो भगवान पास होते, मैं सर्टिफिकेट लेना है नहीं इस बात भगवान फेल हो गए। तो ऐसे परीक्षा करोगे तो फेल हो जाओगे, भीतर से इच्छा का त्याग दो बिल्कुल बिल्कुल, कोई इच्छा मत रखो, सब चीजें बहुत आवेगी, प्रारंभ बदल जाएगा, प्रारंभ मदाज प्रारंभ से विशेष चीजें तरह तरह की चीजें आवेगी, परंतु आ जाए तो मौज, चली जाए तो मौज, अपनी इच्छा है ही नहीं, स्पर्श ही नहीं, आ जाए तो कोई मन में हर्ष नहीं, आ जाए तो कोई दुख नहीं, नहीं आवे तो कोई है ही नहीं इच्छा। आप घर में रहते हो, घर घर के आदमी होते हैं तब ताला नहीं लगाते हैं, बाहर के कोई आते जाते हैं तो ताला लगाते हैं, चीज के ताला लगा दो भाई इनके, ऐसे ही खाऊं खाऊं करते हैं उनके लिए ताला लगा रहता है, चीज मिलती नहीं है, अरे ताला खुला छोड़ देंगे लेंगे ही नहीं, तो ताला खुला सब चीजें सामने आ जाएगी। अपरिग्रस्त थेरिये जन्म कथन था संबोधा, कोई परिग्रह करने की इच्छा नहीं हो तो जन्मांतर की बात याद आ जाएगी और चीजें स्वभाव स्वाभाविक आवेगी। खड़ापे की एक बात है, श्री रामदास जी महाराज ने जो कहा भाई दो आवेद मैंने चाहे रुपये शेर और चाहे रुपये पोट उनके शिष्य दास जी महाराज ने कहा रामदास जी अपने लेना नहीं है कि महाराज इसलिए लोगों का काम आ जाएगा अपने लेना नहीं है अब आप आएगा वो लग जाएगा अपने की इच्छा करें क्यों चाह ना करे कि वो रुपया आ जाए क्यों पाना पड़े वो पड़ा है ऐसी बात मैंने सुनी है दादी महाराज बड़े प्रभावशाली संत हुए हैं जो कहते हैं महाराज अब उसके धनगड़ा पड़ा है क्यों नहीं लेना क्यों उपकार के लिए अपने लिए नहीं उपकार के लिए ना अपने लेना नहीं तो क्या कमी रही कुछ कमी नहीं रही कोई इच्छा नहीं है कमी है ही नहीं अरे मांगते फिरो तो मिलता नहीं मिल जाएगा तो मिल भी जाएगा वो मिलने वाला वो मिलेगा कामना करके फजीती अपनी करनी है नहीं मिलने वाला आप साहब मिलेगा आप साहब आएगा नहीं आएगा तो हमारे चाहिए ही नहीं चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह बादशाह का बादशाह है क्यों चाह ना करें भागवत में आया है कि कवया धनमदान धनों के बारे क्यों जावे कहते हैं कि वृद्धा गुहा किम पर्वतों की गुफाएं रुक गई क्या जदा नदियां सुशील के सूख गई क्या नदियां जो पानी पीने के लिए दूसरे जावे कभी जो भजन करने वाले क्यों धन मरदान जो जिनके पास धन मद में अंधावरे है क्यों जाए रोटी के लिए क्यों जाए पानी के लिए जाए क्यों मकान के लिए जाए ना क्यों अपनी फजती करे बाकी ने लिखा शादी तो ये चीजें आपसे आती है जिसने जन्म दिया है उसके पालन करने का प्रबंध पहले से हो चुका है जैसे हमारी माँ के दूध आ जाता है हम बड़े हो गए माँ वही हमारी पूजनी हम बेटा उसी गई पर दूध नहीं आता क्यों रोटी खाने लगे दूध की जरूरत नहीं जरूरत माँ के दूध आ गया माँ वही बेटा भाई तो भगवान के इतना प्रबंध है कि भाई भोगा तो पालन करो जन्म दिया वो पालन करेगा इस वास्ते हम क्यों चिंता करें क्यों इच्छा करें कि हमारे ये चीज मिल जाए ये चीज मिल जाए अपने हृदय से इच्छा निकालो तो भगवान का प्रेम होगा और ये इच्छा रखोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तत्व की नहीं होंगे जीवन मुक्त नहीं होंगे महात्मा नहीं बन सकोगे और संसार की इच्छा छोड़ दो तो संसार की इच्छा के त्याग का नाम योग है गीता में दुख संयोग वियोगम योग संगीता ये दुखालय शाश्वतम है संसार की इच्छा इसकी कुछ भी इच्छा नहीं करो योग हो गया परमात्मा सिद्ध हो गया योग हो गया दो परिभाषा करिए योग में समत्वम योग उचित दो संग समम ब्रह्म तो चाह गई चिंता मिटी बड़े चिंता मिटी निश्चिंत रहते हैं खूब कोई इच्छा नहीं किसी तरह की इच्छा नहीं है निरस होने जीवन मुक्त हो जाएगा एक ये कामना आप छोड़ दो आपको प्रेम भक्ति चाहो तो प्रेम भक्ति मिल जाएगी तत्व ज्ञान चाहो तो तत्व ज्ञान मिल जाएगा और इच्छा रखोगे तो सीख तो लोगे बोध होगा नहीं पदार्थों की इच्छा अपने में बनी रहेगी आदर महत्ता बनी रहेगी तत्व ज्ञान नहीं होगा जीवन मुक्ति नहीं होगी और इसकी इच्छा छोड़ दो बिना चाहे जीवन मुक्त हो जाओगे कि जीवन मुक्त तो आप हो है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तुम पर काम चाह करके भ्रष्ट है अब चाह करके भ्रष्ट हुआ चाह ना गई चाह गई चिंता मिटी मनवा के मरवा जिसे कृष्ण चाहिए सुशान प्रतिशा कितनी सुगम बात है इच्छा हो जाए पूरी करने में बड़ी मेहनत होती है ऐसे है ही नहीं कोई यूं हो जाए ही नहीं मेरे तो कहते मेरा अशांति है तो भाई यू होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए दो छोड़ दो अशांति आपके पास रहेगी नहीं करके देख लो कोई भी अनुभव करके देख लो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए अब मौज करो फंस गए अब फंस गए और कोई से नहीं क्यों होना चाहिए क्यों राम जी करे वो होना चाहिए वो होना चाहिए राम जी नहीं करे वो नहीं होना चाहिए मैंने कई बातें ये बात कही है सुनाई है एक बैरागी बाबा नौका में चढ़ गए और लोग कई बैठे थे वो सियाराम 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 अपने कहते राम जी। तो ऐसा आया बाद जो वो मल्ला के हाथ में रही नहीं नौका, तो कहते भैया भगवान को याद करो, अब डांट नहीं मानती है, कहाँ जाएगी पता नहीं। तो सब राम राम करने लगे, भगवान को याद करने लगे। बैरागी बाबा ने क्या किया कि बड़बर कमर लूर नौका भरने लगे पानी से। अरे बाबा क्या करते हो, जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम। अरे क्या करते हो तुम ज्यादा। फिर अगर मल्ला बोला कि अब कोई डर नहीं है, भय नहीं है, हमें ठीक आ गया धारा पर। अच्छा जय सियाराम जय जय सियाराम। अब बाहर फेंक रहे पानी। कहते बाबा क्या है तुम, क्या है तुम भगत कहलाते हो, सब डूब जाते ना ये, तुम्हारी दया नहीं आती। कहते बाबा दया तो तब आ, तुम डूबो और मैं डूबू, मैं भी तो साथ में ही था, मैं भी तो साथ ही डूबता, तो तुमने बेकरी काम क्यों किया। कि मैंने समझा कि राम जी डम्बोड़ा चाहते हैं तो अपने सहायता करो, पानी डालो अपना जल्दी डूब जाए। फिर कहते तो नहीं डूबोड़ा चाहते तो भाई भाई, भाई, भाई हम भगत भगवान के हैं कि तुम्हारे हैं। भगवान ही भगत थे, एक राजा थे, उसे यहाँ साग लेने आया, बैंगन लेकर आया कि महाराज ये साग है। उसे कहा तो राजा ने कहा तो ये तो बहुत बढ़िया है भाई, देखो ना कैसा ब्लू रंग लगा है, एक तरफ तेज और एक तरफ पीगा, और देखो कैसा, देखो उसका पॉलिश कितना सुंदर है, और देखो सिर पर मुकुट धरा हुआ, ये तो बहुत ही बढ़िया फल है भाई, साग बहुत अच्छा। तो रसोईया सुन रहा था, उसने देखो भाई साग अच्छा बनाओ, तो साग भी बहुत ही साग बनाया बढ़िया बढ़िया था। राजा खा गए ज्यादा, खा गए ज्यादा, पेट में सुबह चलने भी पड़ जा। सुबह कहा गया रसोईया जी हाँ बैंगन तो चीज अच्छी नहीं है, ठीक नहीं हुआ। कहते मन नाम ही उसका बेगुण, गुण उसमें है ही नहीं, आपने देखा नहीं उसके ऊपर कील मारी है, सिर पर कील मारी है उसके। अब कल मुकुट हो गया, आज कील हो गई। तो राजा उसे कल तो मुकुट था आज कील हो गई। अंदाता मैं बैंगन का नौकर नहीं हूँ, मैं नौकर आपका हूँ। आप वो ठीक है तो बहुत बढ़िया है, तो ठीक नहीं तो बहुत घटिया है। हम बैंगन की हाँ में हाँ मिला ना, थारे में था मैं हाँ मिलाओ, तुम भगवान की हाँ में मिला हुआ, थारी हाँ में मिला हुआ बताओ, मालिक की हाँ में मिला हुआ अपना। तो भगवान कह दो ठीक है महाराज बहुत ठीक है। तो भगवान की हाँ में मिलाओ निहाल जाओ, और अपनी हाँ में भगवान को कहना चाहिए भगवान हमारे ऐसा कर दो, दोष में काम नहीं बनेगा। नारायण नारायण नारायण।